पेज नंबर 259 उपसंहार। अप्रभंश के अध्ययन और अनुशीलन का इतिहास सामान्य लोक चेतना के उदय और विकास के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। हमारी राष्ट्रीय भावना जैसे जैसे लोकोन्मुख होती गई, हमारा ध्यान प्राचीन और अर्वाचीन लोक भाषाओं तथा लोक साहित्यों की ओर बढ़ता गया। जिस प्रकार संस्कृत भाषा और साहित्य संबंधी अनुशीलन का अभिनव उत्साह आधुनिक सांस्कृतिक पुनरुत्थान का मंगलाचरण है, उसी प्रकार प्राकृत और अपभ्रंश में क्रमशः बढ़ती हुई रुचि उस पुनरुत्थान की लोकोन्मुखता का प्रमाण है। अपभ्रंश का अब तक जितना साहित्य प्राप्त हुआ है, उसका अधिकांश निःसंदेह केवल दिगंबर जैन धर्म से प्रेरित और प्रभावित है। फिर भी विभिन्न मत के आधुनिक विद्वानों की दिलचस्पी अपभ्रंश भाषा और साहित्य में बढ़ती जा रही है, क्योंकि धीरे धीरे यह मत प्रतिष्ठित होता जा रहा है कि अपभ्रंश ही वह आर्य भाषा है जो ईसा की लगभग 7वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी से तक संपूर्ण उत्तर भारत के सामान्य लोक जीवन के परस्पर भाव विनिमय और व्यवहार की बोली रही है। ऐसी स्थिति में जिन लोगों को अपनी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा तथा जातीय साहित्य के इतिहास में थोड़ी सी भी दिलचस्पी है कि आदि स्रोत पता लगाने के लिए अपभ्रंश भाषा और साहित्य की छान बीन करते हैं, संभव है सभी प्रादेशिक भाषाओं और साहित्यों के लिए अपभ्रंश के उपलब्ध साहित्य में एक समान उपादेय सामग्री न प्राप्त हो। फिर भी अनुशीलन की इस अवस्था में इसकी संभावनाएं समाप्त नहीं हो जाती। कहा नहीं जा सकता कि अपभ्रंश का अभी कितना साहित्य पुस्तक भंडारों तथा बिखरे हुए व्यक्तियों के पास छिपा पड़ा है। अपभ्रंश के जो ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, उनमें से भी किस में कितने बड़े तथ्य को प्रकाशित करने की शक्ति है, ये भी अनुसंधान का विषय है। पिछले 50-60 वर्षों के अपभ्रंश संबंधी अध्ययन के छोटे से इतिहास को देखकर सहज ही यह विश्वास बंधता है कि इस भाषा में लिखित साहित्य के पास अभी बहुत सामग्री है जो आधुनिक भाषाओं और साहित्यों के आदि काल पर प्रकाश डाल सकती है। वे ई संस्कृत और हिंदी के तुलनात्मक अध्ययन से हिंदी भाषा और साहित्य का जितना लाभ हुआ है, उससे कम लाभ की संभावना अपभ्रंश और हिंदी के तुलनात्मक अध्ययन में नहीं है। संभावना ही अन्वेषण की प्रेरक शक्ति है, लेकिन इससे आगे बढ़कर जब वह पूर्वग्रह का रूप धारण कर लेती है तो वैज्ञानिक अनुशीलन में बाधा पहुंचती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर इन पृष्ठों में अपभ्रंश और हिंदी का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। अध्ययन के क्रम में पेज नंबर 260 कहीं कहीं पूर्ववर्ती विद्वानों की स्थापनाओं से उत्पन्न धारणा को धक्का लगा, लेकिन अधिकांशतः अपभ्रंश और हिंदी के घनिष्ठ संबंध की पुष्टि ही हुई है। जहां तक भाषा विषयक संबंधों की बात है, इस अध्ययन क्रम में ये स्पष्ट हुआ है कि हिंदी शब्दों तथा पदों की व्युत्पत्ति का पता लगाने में अपभ्रंश का महत्व बहुत बड़ा है। पहले के भाषा वैज्ञानिक जहां संस्कृत और हिंदी अथवा प्राकृत और हिंदी के बीच की रिक्त अवस्था को या तो छोड़ देते थे अथवा नाना प्रकार के अनुमानों से काम लेते थे, वहां अपभ्रंश से उस रिक्तता की पूर्ति की जा सकती है। भले ही प्रत्येक दशा में अपभ्रंश द्वारा की गई यह पूर्ति विकास की ही सूचक न हो, किंतु उससे भी एक तथ्य की पुष्टि होती है। जैसे शब्द कोश के क्षेत्र में अपभ्रंश ने प्रायः प्राकृत की ही निधि का प्रयोग किया है, शब्दों में ध्वनि परिवर्तन करके उन्हें विशिष्ट रूप अपभ्रंश ने कम दिया है, फिर भी इससे उस युग में प्रचलित आर्य भाषा की सामान्य प्रवृत्ति का पता चलता है। इसके विपरीत हिंदी के अनेक देसी शब्द ज्यों के त्यों अपभ्रंश में भी मिल जाते हैं। इससे उन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता भले ही न चले, लेकिन इतना तो मालूम हो ही जाता है कि लोक में ऐसे शब्दों का प्रचलन काफी पुराना है। देशी शब्दों की व्युत्पत्ति का पता लगाने के लिए ध्वनिसाम्य पर संस्कृत का शब्द गढ़ने अथवा खोज निकालने से कहीं अच्छा है उसके प्राकृत और अपभ्रंश प्रयोगों को धैर्य पूर्वक ढूंढना। यही समझकर भाषा वाले प्रकरण में कुछ ऐसे देशी शब्दों की सूची दी गई है। जहां तक हिंदी व्याकरण का संबंध है, कुछ विद्वानों को अपभ्रंश के योग पर संदेह है। उनका कहना है कि हिंदी की अधिकांश क्रियाएं कृदंत हैं, तिंत नहीं। ये कृदंत क्रियाएं संस्कृत से और संस्कृत व्याकरण से बिल्कुल मिल गई हैं, जबकि प्राकृत अपभ्रंशों से मेल नहीं खाती। वहां प्राकृत और अपभ्रंश में तिंत क्रियाओं का जोर है, जबकि प्राकृत अपभ्रंशों के साथ हिंदी का यह मौलिक भेद है। तब उनसे इसकी उत्पत्ति कैसे? ऐसे संदेहों को दूर करने के लिए तथ्यों के आधार पर दिखलाने की कोशिश की गई है कि अपभ्रंश में भी कृदंतज क्रियाएं प्रचलित हो गई थीं। इसके अतिरिक्त क्रिया के कृदंत रूपों का जोर हिंदी में शुरू से ही नहीं रहा है। जायसी और तुलसी की भाषा में क्रिया में उतने ही कृदंत रूप नहीं मिलते जितने प्रेमचंद और प्रसाद की भाषा में मिलते हैं। क्रिया रूपों की यह अवस्था बहुत लंबे विकास क्रम का परिणाम है। यही बात हिंदी के विकारी कारक पदों और परसर्गों के बारे में भी समझनी चाहिए। विविध कारकों में प्रयुक्त होने वाले हिंदी की विकारी विभक्तियां तथा परसर्ग भी क्रमिक विकास के परिणाम हैं। हिंदी विभक्तियों और परसर्गों का इतिहास जानने के लिए अपभ्रंश का अध्ययन अनिवार्य है। हिंदी के सभी विकारी कारक रूप तथा अधिकांश कारक परसर्ग अपभ्रंश की ही अवस्था होकर आए हैं। पेज नंबर 261। जहां तक अपभ्रंश और हिंदी के साहित्यिक संबंध की बात है, उसमें प्रवेश करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि अपभ्रंश ने उस संक्रांति युग में भी लोक जीवन को अपनाकर जो युग्यांतरकारी कार्य किया, हिंदी ने उसी को अपने ढंग से बहुत बड़े पैमाने पर संत भक्ति काव्य के द्वारा आगे बढ़ाया। उस युग में लोक जीवन ने अपभ्रंश के माध्यम से अपनी जिन भावनाओं को व्यक्त किया, वे कालांतर में और भी प्रबल हुई तथा गौरवशाली प्राचीन भाव संपदा का सहारा पाकर संत भक्ति आंदोलन के रूप में प्रकट हुई। हिंदी साहित्य का उदय लोक जीवन के उसी उच्छ्वास की अभिव्यक्ति है और इस विषय में अपभ्रंश साहित्य उसका अग्रदूत है। इससे आगे बढ़कर दोनों में अनुरूपता स्थापित करने का प्रयत्न अपभ्रंश के प्रति अतिशय मोह का प्रतीक है। हिंदी साहित्य के मूल उत्स कई हैं। उसने अनेक स्रोतों से जीवन धारा ग्रहण की है और अपभ्रंश भी उनमें से एक है, जिस हिंदी साहित्य के अभ्युदय पर संस्कृत साहित्य और ब्राह्मण संस्कृति के पुनरुत्थान की गहरी छाप है। उसे एकमात्र जैन धर्मानुमोदित अपभ्रंश साहित्य से उत्पन्न हुआ बतलाना बहुत बड़े सत्य पर पर्दा डालना होगा। अपभ्रंश साहित्य की जीवंत भावधारा के साथ साथ उसकी कुछ रूढ़ भावनाओं और प्रवृत्तियों की भी हिंदी साहित्य ने रक्षा की और धीरे धीरे फिर उन्हें छोड़ दिया। भावधारा के विषय में अपभ्रंश से हिंदी का जहां केवल ऐतिहासिक संबंध है, वहां काव्य रूपों और छंदों के क्षेत्र में उस पर अपभ्रंश की गहरी छाप है। रूपविधान विषय विषय की अपेक्षा धीरे धीरे बदलता है और इस विषय में रूढ़ियों का पालन अधिक दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि हिंदी ने अपभ्रंश की काव्य रूप संबंधी अनेक परिपाटियों को ज्यों का त्यों और कुछ को थोड़ा सा सुधार कर स्वीकार कर लिया। इस तरह हिंदी ने अपभ्रंश की जीवंत परंपरा का भाषा और साहित्य दोनों क्षेत्रों में ऐतिहासिक विकास किया।